नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नीति वचन नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
Thank you. प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर के निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और फिर से आज परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से नीति वचन की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले दिनों से अब तक जो कुछ भी हमने अध्ययन में सीखा है निश्चय ही हम सबके लिए बहुत आशीष का कारण ठहरा है। पिछले अध्ययन में हमने बच्चों, युवाओं और बड़ों के लिए बहुत सारे ज्ञान की बातों को सीखा है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 27 से अध्ययन जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर और मधुर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से एक बार दिया है ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि हर एक व्यक्ति जब आपके वचन को सुनता है निश्चित रूप से उसे समझ सके, ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चल सके। आज हम आपके निकटता में उन भाई बहनों को लाते हैं जो निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, बीमार अवस्था में हैं या उन्हें ऐसा लगता है कि उनका कोई भी नहीं है। पिताजी, आप उनकी सहायता करें ताकि वे समझने पाए कि आप उनसे प्रेम करते हैं। आप उनके पिता हैं क्योंकि आपने उन्हें रचा है। उनकी हर एक कमी घटियों को आप दूर करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आज हम अध्याय 27 से अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। इस अध्याय में मित्रता का विषय आता है, तो आइए आप मेरे साथ नीति वचन की पुस्तक 27 अध्याय उसके एक पद को निकाल लीजिए। नीति वचन 27 अध्याय उसके एक पद में लिखा है, कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। आज एक चिर परिचित विचार है कि आज का काम कल पर छोड़ दिया जाए। इसमें नहीं करने की इच्छा नहीं है, यह टालने की इच्छा है। एक कहावत है, नरक का मार्ग अच्छी मनोकामना से बनाया जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत इस प्रकार से आता है, टालना समय की चोरी है। परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय उसके 7 पद में, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। और दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। यशाया 1 अध्याय उसके 18 पद में वह कहता है, यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। मनुष्य की मानसिकता है कि वह आने वाले समय की प्रतीक्षा करे। आपको स्मरण होगा कि फेलिक्स पौलुस से सुसमाचार सुनकर अपने उद्धार के लिए परेशान तो था, परंतु उसने बंदी पौलुस से कहा, प्रेरितों के काम 24 अध्याय उसके 25 पद में, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि वह अवसर फेलिक्स को फिर नहीं मिला। मिस्र का फिरौन इसराइल की मुक्ति को सदैव कल पर टाल रहा था, जिसके कारण उसके पहले उठे की मृत्यु हो गई, साथ ही संपूर्ण देश के सब पहले उठे मारे गए। आज ही उद्धार का दिन है, कल क्या हो कोई नहीं जानता। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि हम कल के दिन को देखेंगे या नहीं। यदि आज आप वचन सुन रहे हैं तो परमेश्वर के पास अपने जीवन को अर्पित कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे सकता है, आपके जीवन को बदल सकता है। नीति वचन 27 के 2 पद में लिखा है, तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप न करना। दूसरा, तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना न करना। काश गोलियत इस नीति वचन को सुनता। वह इसराइल की सेना के आगे सीना चौड़ा करके आता और उन्हें ललकारता था, परंतु वह एक युवक दाऊद के हाथों मारा गया। नीति वचन 27 के 3 पद में लिखा है, पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है, परंतु मूर्ख का क्रोध उन दोनों से भारी है। यदि कोई मूर्ख आपसे क्रोधित है तो आप संकट में हैं, क्योंकि उसमें विवेक नहीं है। वह कुछ भी कह सकता है और कुछ भी कर सकता है। नीति वचन 27 के 4 पद में लिखा हुआ है, क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। जल उठना अर्थात ईर्ष्या से भर जाना। श्रेष्ठ गीत 8 अध्याय के 6 पद में लिखा है, ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है, उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है। याकूब के परिवार में ईर्ष्या के कारण क्या हुआ था? उन्होंने अपने छोटे भाई यूसुफ को दासत्व में बेच दिया। नीति वचन 27 उसके 5 और 6 पद में लिखा है, खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। बाइबल में इससे आत्मविरोधी व्यवहार के अनेक उदाहरण हैं। अन्य जातियों के साथ खाना खाते खाते अकस्मात ही अलग हो जाने पर पौलुस ने पत्रस को झिड़का। पौलुस को इसकी आवश्यकता भी थी। उसने पौलुस की बात पर ध्यान दिया, उनमें मन मुटाव भी नहीं हुआ। सहायता के लिए आपके दोष प्रकट करने वाला मित्र हो तो बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। यही कारण है कि प्रचारक के पास एक अच्छी पत्नी का होना अति आवश्यक है। वह उसे दीनता के मार्ग पर लेकर चलेगी और उसकी त्रुटियों पर उसे संभालेगी, अर्थात उन त्रुटियों को उस पर प्रकट करेगी। मैं आराधना से बाहर आकर फूला हुआ होता हूँ। अच्छा संदेश की वजह से मैं बहुत खुश होता हूँ, परंतु मेरी पत्नी मुझे कहती है और मुझे बताती है कि मैंने कहाँ पर गलतियाँ की है। यहाँ विषम विचार यहूदा को प्रकट करता है, जिसने प्रभु यीशु को चुंबन देकर पकड़वाया था। कई बार लोग हमें मीठी मीठी बातें कहते हैं और कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है, परंतु पीठ पीछे बुराई करते हैं। हम नीति वचन 27 उसके 7 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती है। जी हाँ, फ्रांस, इटली, स्पेन और जर्मनी में ऊंचे वर्ग के पास खाना इतना अधिक था कि वे साधारण भोजन से ऊब गए थे, चाहे वह कितना भी अच्छा था। अतः उनके खाना पकाने वालों को उनके लिए नया नया भोजन पकाना पड़ता था कि उनकी भूख बढ़े। इसकी तुलना एक भूखे मनुष्य से करें, उसके लिए कैसा भी खाना स्वादिष्ट है। परमेश्वर के वचन के साथ भी ऐसा ही है। हमें उसे खाना है, चबाना है, उसे बार बार ध्यान में लाकर उस पर मनन चिंतन करना है। परमेश्वर हम में भूख जगाए, उसके वचन की सच्ची भूख, ताकि हम उसे और अधिकाई से समझ सकें। नीति वचन 27 के 8 पद में लिखा है, स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। कलिसियाओं और मसीही संस्थाओं में अनेक विश्वासी गोल सुराख में चौकोर खूंटा या चौकोर सुराख में गोल खूंटा है। इसका कारण है कि परमेश्वर ने प्रत्येक विश्वासी को वरदान दिया है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 7 पद में, सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। परमेश्वर ने प्रत्येक विश्वासी को वरदान का सदुपयोग करने के लिए निश्चित स्थान दिया है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपने इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। हमें उस स्थान पर अपना वरदान उपयोग करना है। नए नियम में हमारे पास उन विश्वासियों का उदाहरण है जिन्होंने अपना वरदान कभी काम में नहीं लिया। पौलुस देमास नामक एक युवक के विषय में कहता है, दूसरा तीमुथियुस के पत्र 4:10 में, देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। वह संसार में चला गया, जहां तक हम जानते हैं वह उस स्थान में कभी नहीं समा पाया जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा था। नीति वचन 27:9-10 में लिखा है, जैसे तेल और सुगंध से वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे न छोड़ना और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर न जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। एक बार मैं एक धर्मी स्त्री का दफन समारोह में गया हुआ था। वहां केवल 15 लोग ही थे। उसके संबंधी उनके गांव ही के लोग थे, अर्थात गांव में ही रहते थे, जो दूर पूर्वी क्षेत्र में था। वह यहां अपने पति के स्वास्थ्य के कारण आई थी, परंतु कलीसियाई कार्यों में वह सक्रिय थी। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से उत्तम है। हम सबको मित्रों की आवश्यकता पड़ती है। अपने पड़ोस में मित्र बनाना अच्छा है, अपेक्षा इसके लिए कि दूर रहने वाले संबंधियों पर आप आशा रखें। नीति वचन 27:12 में लिखा है, बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते और हानि उठाते हैं। भविष्यवाणी के अध्ययन का यह एक बहुत बड़ा लाभ है। हमें भविष्य का ज्ञान होना है। सच कहूं तो मैं आज समस्याओं के समाधान के लिए मनुष्य पर निर्भर करने के विषय में बड़ा निराश एवं निराशवादी हूं। मेरे विचार में मनुष्य के पास समाधान नहीं है। हम संकट और विपदा की ओर बढ़ रहे हैं, इसमें दो राय नहीं। मनुष्य का यह सोचना कि वह संसार की समस्याओं का समाधान कर सकता है, उसकी मूर्खता है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि संकट काल आ रहा है और परमेश्वर संसार को दंड देगा। मेरे मित्रों, इस नीति वचन से संबंधित एक और विचार है। मैं संक्षिप्त में सीधा सीधा कहता हूं, जीवन बीमा खरीद लें। परमेश्वर चाहता है कि आप भविष्य की योजना बनाएं। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते हैं और हानि उठाते हैं। बुद्धिमान मनुष्य आने वाले कठिन समय की तैयारी करता है। कुछ लोगों के विचार में मनुष्य को सेवानिवृत्ति के लिए तैयारी नहीं करना चाहिए, जीवन बीमा नहीं करवाना चाहिए। एक मूर्खता का विचार है कि हमें प्रभु पर भरोसा रखना है। मैं तो कहूंगा कि परमेश्वर ने हमें भविष्य की तैयारी का साधन दिया है, तो हमें उसका लाभ उठाना है और इसके साथ साथ उससे भी प्रार्थना करना है, उस पर भी भरोसा रखना है। नीति वचन 27:14 में लिखा है, जो भोर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है उसके लिए यह शाप गिना जाता है। इस बात में उपहास छिपा है। कुछ लोग प्रेम और लगाव का ऐसा नाटक करते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि उनके मन में आपका बड़ा स्थान है। ऐसे मनुष्य से सावधान जो आवश्यकता से अधिक आपकी प्रशंसा करता हो। इसका एक अच्छा उदाहरण बाइबल में अबशालोम का है। 2 सामुएल की पुस्तक 15:1-6 में हम इसे पाते हैं। वह प्रातःकाल उठकर नगर फाटक पर बैठ जाता था और राजा के पास आने वाले प्रजा के लोगों के साथ मीठी मीठी बातें करके उनका मन जीत लेता था। वह उनसे अपार प्रेम करने का नाटक करता था। वह उनकी प्रशंसा करता और उनके साथ उनके भेद की बातों को लेता था, परंतु उसके मन में राजा का सिंहासन छीनने की अभिलाषा थी। मैं सेमिनारियों में उपदेश देते समय युवा प्रचारकों से कहता हूँ, युवकों आप किसी भी कलीसिया में जाएं, वहाँ हमेशा एक प्रिय भक्त होगा जो कहेगा कि आप कैसे उत्तम प्रचारक हैं। कभी एक मधुर वृद्ध महिला होगी या कोई पुरुष होगा, परमेश्वर उन्हें युवा प्रचारकों के प्रोत्साहन के लिए वहाँ पर रखता है। वे आपकी ऐसी प्रशंसा करेंगे कि जैसे आप प्रेरित पौलुस, मार्टिन लूथर, जॉन केल्विन, विली संडे, विली ग्राहम सब जोड़कर एक हैं। यह बड़ी अच्छी बात है कि आपके प्रोत्साहन के लिए वे वहां हैं, परंतु आप उनकी बात पर निर्भर ना हो, वह सच नहीं है। चटुकारी इत्र के समान है, उसे सूंघना चाहिए और पीना नहीं। यदि आप उसे पीते हैं तो निश्चय ही यह आपके लिए हानि है। नीति वचन 27 उसके 17 पद में लिखा है, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। आपके मस्तिष्क को कुशाग्रता प्रदान करने वाला मित्र पाना बहुत ही अच्छा है। आप उसके साथ लाभ की बातें कर सकते हैं। मेरे पास भी ऐसा एक मित्र था। हम साथ बैठकर आत्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। उससे मुझे ताजगी और सामर्थ प्राप्त होता था। मैं कुछ न कुछ अवश्य सीखता था। जी हाँ, ऐसा मित्र पाना एक महान सौभाग्य है। नीति वचन 27 के 19 पद में लिखा है, जैसे जल में मुख की परछाई मुख को प्रकट करती है वैसे ही मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। ऐसा मित्र पाना महान बात है जो धोखा नहीं देगा। आप उससे अपने मन की बात कर सकते हैं। मित्र वह है जो आपको समझता है और आपसे प्रेम रखता है और आपके लिए हानि की बातों को नहीं सोचता। नीति वचन 27 के 20 पद में लिखा है, जैसे अधोलोक और विनाश लोक वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। हम अधिक और अधिक देखना चाहते हैं, हमें संतोष नहीं होता है। यही कारण है कि हमें विश्व भ्रमण अच्छा लगता है, हम संतुष्ट नहीं होते हैं। नीति वचन 27 उसके 21 पद में लिखा है, जैसे चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्ठी है वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। प्रशंसा से सावधान, सुनिश्चित करें कि उसका प्रभाव आप पर उचित हो। डॉक्टर आयरनसाइड ने कहा, मनुष्य को परखने का प्रशंसा और चटुकारी की आग से बढ़कर अन्य कुठाली नहीं। बुराई में प्रभु से लिपटना और बदनामी से बचने के लिए उस पर निर्भर करना तो आसान है, यद्यपि ऐसी स्थिति में अनेक जन चूक जाते हैं, परंतु अपने मार्ग में अपने अभिप्राय के निमित्त दीनता पूर्वक यत्न करते हुए प्रशंसा और चापलूसी अविचलित रहना परमेश्वर की निकटता में रहने की मनुष्य की सच्ची पहचान है। नीति वचन 27 के 24 पद में लिखा है, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती और क्या राजमुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। मेरे प्रियो, संपत्ति सदा नहीं ठहरती। आज के भौतिक संसार में यह समझना अति आवश्यक है। आप अपना धन साथ नहीं ले जाएंगे, कफन में जेब नहीं होती है। क्या राज मुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है? इस बदलते संसार में राजवंशों का उदय और पतन होता रहता है। केवल परमेश्वर ही है जिस पर हम आश्रित रह सकते हैं। वही एकमात्र अपरिवर्तनीय मित्र है। मित्रता पर यह एक महान अध्याय है। मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन में इस बात को सीख लें, इसका गांठ बांध लें कि परमेश्वर ही हमारा अच्छा मित्र है। इस संसार में हमारे बहुत से मित्र होते तो हैं, परंतु कठिन पल में वे छोड़ देते हैं। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु हमारा अच्छा मित्र है। क्या आप चाहते हैं कि आपका एक अच्छा मित्र हो? क्या आप चाहते हैं कि कोई आपसे प्रेम करे, आपकी चिंता करे? यदि हाँ, तो आप आज यीशु को आमंत्रित कीजिए, वह आपका मित्र बनने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। और मैं जानता हूँ कि आप में से कई श्रोता भाई बहनों ने प्रभु यीशु को अपना मित्र बनाने का निर्णय लिया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
यीशु ने कहा, जीवन का जल मैं तुम्हें दूंगा, आ जाओ मेरे पास, बुझा लो अपनी प्यास, शांति तुम्हें दूंगा। यीशु ने कहा, जीवन का जल मैं तुम्हें दूंगा, आ जाओ मेरे पास, बुझा लो अपनी प्यास, शांति तुम्हें दूंगा।